एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज ग्रंथ सार में हम अमेरिकी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसा उपन्यास जिसने न सिर्फ साहित्य पर बल्कि राजनीतिक सोच पर भी मतलब एक गहरी छाप छोड़ी है, रॉबर्ट पेन वॉरेन का ऑल द किंग्स मैन।
हाँ बिल्कुल, 1946 में आया और अगले ही साल पुलित्ज़र भी जीत लिया। इसे सच में 20वीं सदी के जो बड़े अमेरिकी उपन्यास हैं उनमें गिना जाता है।
और इसके लेखक रॉबर्ट पेन वॉरेन वो भी कोई कम नहीं थे। जरा सोचिए, अकेले ऐसे राइटर जिन्होंने फिक्शन और पोएट्री दोनों में पुलित्ज़र जीता हो।
सही कहा, उनकी दक्षिणी संस्कृति की समझ गजब की थी। और ये उपन्यास हमें ले जाता है 1930 के दशक के अमेरिका में, वो भी दक्षिण में, जब महामंदी का दौर था।
हाँ, और अक्सर ये कहा जाता है कि ये लुइसियामा के गवर्नर यूई पी लॉन्ग से प्रेरित है, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी तो है नहीं।
ऐसा है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो सत्ता का नशा, सही गलत के बीच की वो धुंधली लकीरें और हमारी अपनी जिम्मेदारियां, इन सब की पड़ताल है।
और दिलचस्प बात ये भी है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, इसमें किरदारों का, खासकर नैरेटर जैक बर्डन का, एक गहरा मनोवैज्ञानिक सफर भी है।
हाँ, उसका बिल्डुंग्स रोमान जिसे कहते हैं, उसके नैतिक और मानसिक विकास की कहानी।
तो आज हम इसी कोशिश में हैं, इस जटिल कहानी की परतें खोलेंगे, किरदारों के सफर को समझेंगे और उन सवालों से रूबरू होंगे जो वॉरेन उठाते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
तो कहानी का नरेटर है जैक बोर्डन। पहले इतिहास पढ़ता था पर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अब वो विली स्टार्क नाम के एक ताकतवर और करिश्माई नेता का राइट हैंड मैन है।
जैक बर्डन सुना है थोड़ा सिनिकल किस्म का है, दुनिया से कटाकटा सा।
हाँ कुछ वैसा ही, दक्षिणी एलीट क्लास से आता है। और कहानी जब शुरू होती है, विली स्टार्क सिर्फ कजन विली होता है, मेसन काउंटी का एक ईमानदार आदर्शवादी ट्रेजरर।
अच्छा, कजन विली।
जी, वो एक भ्रष्ट स्कूल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ लड़ रहा होता है, आम आदमी के लिए आवाज उठा रहा होता है, बिल्कुल जमीनी नेता।
और माहौल कैसा था उस वक्त अमेरिकी दक्षिण का? महामंदी का जिक्र किया आपने।
हाँ, गरीबी थी, सामाजिक उथल पुथल थी, तो एक तरफ विली का ये भोलापन, उसके आदर्श, और दूसरी तरफ राजनीति का वो जमा हुआ भ्रष्टाचार, यहीं से कहानी में टेंशन बनती है।
तो सवाल ये उठता है कि इस माहौल में एक आदर्शवादी टिकेगा कैसे? मतलब क्या हुआ उसके साथ? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने कजन विली को द बॉस बना दिया?
वो टर्निंग पॉइंट आता है एक धोखे से। होता यह है कि जो पुराने जमे हुए नेता हैं, वो विली को गवर्नर चुनाव में खड़ा तो करते हैं, पर जीतने के लिए नहीं, सिर्फ वोट काटने के लिए, एक स्पॉइलर की तरह।
तो उसे इस्तेमाल कर रहे थे।
बिल्कुल, और विली बेचारा पूरी मेहनत से लगा हुआ है, उसे पता ही नहीं। लेकिन फिर सच सामने आ जाता है। सैंडी बर्ग, जो उस वक्त दूसरे खेमे में थी, वो नशे में विली के एक साथी टाइनी डफी को सब बता देती है।
और डफी विली को बता देता है।
हाँ, शायद जलन में या किसी और वजह से वो विली को सब बता देता है, और ये सच्चाई विली पर जैसे बिजली बनकर गिरती है, उसका सारा आदर्शवाद, भोलापन, सब चकनाचूर।
फिर
आता है वो मशहूर सीन, एक मेले में विली नशे में है, अपना तैयार किया हुआ भाषण फाड़कर फेंक देता है, और फिर वो जो बोलता है वो कमाल का होता है।
क्या बोलता है वो?
वो अपनी गंवार पहचान, अपनी जड़ों को पूरी तरह अपनाता है, उन अमीर भ्रष्ट नेताओं पर गरजता है जिन्होंने उसे मोहरा बनाया। एक जबरदस्त, दिल से निकला भाषण। उसी पल कजिन विली मर जाता है और द बॉस पैदा होता है।
वाह!
वो चुनाव हार जाता है लेकिन लोगों का दिल जीत लेता है, और फिर अगला चुनाव भारी बहुमत से जीतता है।
और गवर्नर बनते ही सत्ता का खेल शुरू, उसका नशा।
बिल्कुल, विली स्टार्क की ताकत बढ़ने लगती है, लेकिन उसके कामों में एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। एक तरफ वो सच में जनता के लिए काम करता है, सड़कें, पुल, गरीबों के लिए अस्पताल,
मतलब अच्छे काम तो कर रहा था।
हाँ, ऐसे काम जो करे किसी ने सोचा भी नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ इन कामों को करने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो वही तरीके अपनाने लगता है जिनसे उसे नफरत थी, ब्लैकमेल, धमकी, विरोधियों को दबाना।
यही वो नैतिक सवाल खड़ा होता है ना, क्या अच्छे मकसद के लिए बुरे रास्ते अपनाना ठीक है?
हाँ, और विली का तो अपना फलसफा बन जाता है इस पर। वो कहता है, तुम्हें बुराई से अच्छाई बनानी होगी, क्योंकि इसे बनाने के लिए और कुछ नहीं है।
क्या लाइन है! मतलब ये जायज ठहराने का तरीका था या सच में उसका विश्वास था?
यही तो उपन्यास का बड़ा सवाल है। और इसी में जैक बर्डन की भूमिका अहम हो जाती है। वो सिर्फ दाहिना हाथ नहीं विली का, एक तरह से हथियार बन जाता है।
हथियार किस तरह का?
जैक का काम होता है ऐतिहासिक शोध करना, असल में विली के दुश्मनों के अतीत के राज खोलना, ऐसी बातें ढूंढना जिनसे उन्हें चुप कराया जा सके।
अच्छा, और जैक ये काम करता है?
हाँ, अपने सिनिसिज्म की वजह से। उसका वो उदासीन रवैया, दुनिया से कटा हुआ महसूस करना, उसे इस काम के लिए फिट बनाता है। उसका अपना एक फंडा है जिसे वो ग्रेट ट्विच कहता है।
ग्रेट ट्विच, ये क्या चीज है?
ये एक तरह का मतलब शून्यवादी विचार है। जैक सोचता है कि इंसान जो भी करता है वो बस मांसपेशियों की अनैच्छिक हरकतें हैं, जैसे मेंढक का पैर करंट लगने पर फड़कता है, बस वैसा ही, कोई मतलब नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं।
ओह, तो मतलब नैतिक जिम्मेदारी से बचने का तरीका।
बिल्कुल, अगर सब कुछ बस एक ट्विच है तो फिर किसी काम के नतीजे की फिक्र क्यों करना। मिसाल के तौर पर जब उसे जज इरविन के अतीत को खंगालने का काम मिलता है,
वही जज इरविन जो उसके पिता जैसे थे।
हाँ, जिनका वो सम्मान भी करता था, जैक इसे बस एक रिसर्च का काम समझता है, फैक्ट्स जमा करना, ये नहीं सोचता कि इसका अंजाम क्या होगा, किसी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा।
और यही जैक बर्डन का सफर है, तथ्यों से जिम्मेदारी तक का। वो शुरू में एक विचार का आदमी है, किनारे बैठकर देखने वाला, और विली है कर्म का आदमी।
सही कहा, वो विली के जरिए दुनिया को जी रहा होता है, पर खुद भावनात्मक रूप से दूर रहने की कोशिश करता है।
लेकिन ये दूरी कब तक बनी रहती है?
ज्यादा देर नहीं। जैसे जैसे वो अतीत खोदता है, जज इरविन का मामला हो या अपने ही परिवार के राज, उसे हकीकत का सामना करना पड़ता है। उसे समझ आने लगता है कि उसके शोध का असर सिर्फ कागज पर नहीं होता।
वो कैस मैस्टन वाली कहानी का भी जिक्र आता है ना?
हाँ, वो 19वीं सदी की कहानी, गुनाह और उसके नतीजों के बारे में। जैक शुरू में उसे समझ नहीं पाता क्योंकि वो जिम्मेदारी से भाग रहा होता है,
लेकिन फिर
सच्चाई उसे घेर लेती है। जज इरविन का राज खुलता है, वो आत्महत्या कर लेते हैं, और फिर जैक को पता चलता है कि जज इरविन ही उसके असली पिता थे।
बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झटका होगा उसके लिए।
बिल्कुल, ये दोहरा झटका उसके सारे डिफेंस तोड़ देता है। यहीं से उसका असली बदलाव शुरू होता है। अंत तक आते आते वो उस ग्रेट ट्विच वाले फलसफे को छोड़ देता है। उसकी जगह वो जिंदगी को स्पाइडर वेब की तरह देखने लगता है।
मकड़ी का जाला, इसका क्या मतलब?
मतलब कि दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, हर इंसान, हर घटना। जैसे जाले का एक कोना हिलाओ तो पूरा जाला हिलता है।
मतलब हर काम का असर होता है, कोई बच नहीं सकता।
सही। जैक अब इतिहास से भागता नहीं, बल्कि उसे और समय की भयानक जिम्मेदारी को स्वीकार करता है।
कमाल का सफर है जैक का। और दूसरी तरफ विली स्टार्क, वो हीरो भी है, विलन भी, एक ट्रेजिक हीरो।
हाँ, क्लासिक ट्रेजेडी। उसका घातक दोष शायद यही था कि उसे लगता था वो सब कंट्रोल कर सकता है, और उसका ये मानना कि उसका लक्ष्य, जैसे वो अस्पताल बनवाना, किसी भी तरीके को सही ठहराता है।
लेकिन इसकी कीमत उसे चुकानी पड़े,
बहुत भारी कीमत। ईमानदारी गई, परिवार टूट गया, बेटा टॉम उसी के लिए पैसे और आजादी के नशे में अपाहिज हो गया, पत्नी लूसी जो उसके आदर्शों का चेहरा थी वो उसे छोड़कर चली गई,
और अंत में जान भी गंवा दी।
हाँ, उसी सपने और सत्ता की वेदी पर। वो एक ही साथ लोगों का उद्धार करने वाला भी है और जालिम भी। वॉरेन ने कमाल का जटिल किरदार बनाया।
और इसी दुनिया में है एन स्टैंटन, जैक का पहला प्यार, एडम की बहन।
शुरू में एन जैक के लिए जैसे पवित्रता और आदर्श का प्रतीक है, पुराने मूल्यों का। लेकिन उसका यह भ्रम टूटता है जब उसे अपने पिता, जो गवर्नर रह चुके थे, उनके कुछ पुराने कामों का पता चलता है।
अच्छा, उसके पिता के बारे में?
हाँ, उसका आदर्शवाद बिखर जाता है, और इसी टूटन में वो बिली स्टार्क की तरफ खींचती है। शायद उसकी ताकत, उसका कुछ कर गुजरने का अंदाज उसे आकर्षित करता है
विली की तरफ।
जी, विली के साथ उसका एक सीक्रेट रिश्ता बन जाता है। ये न सिर्फ जैक के मन में बसी एन की इमेज तोड़ता है, बल्कि कहानी के दुखद अंत का कारण भी बनता है। एन दिखाती है कि कैसे आदर्शवाद जब हकीकत से टकराता है तो समझौते करने पड़ते हैं।
और इसका भाई एडम स्टैंटन, वो तो बिल्कुल अलग था, है ना?
हाँ, एडम एक काबिल सर्जन, साइंस और लॉजिक का आदमी, और सबसे बढ़कर नैतिकता को लेकर बहुत सख्त। उसके लिए सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था।
तो जाहिर है वो विली से नफरत करता होगा।
बहुत ज्यादा। उसे लगता था विली बुराई का साक्षात रूप है।
लेकिन विडंबना ये कि वो भी विली के जाल में फंस गया।
हाँ, विली उसे अपनी बातों से, अपनी विजन से, वो बड़ा अस्पताल चलाने के लिए मना लेता है, उसे यकीन दिलाता है कि राजनीति की गंदगी उस तक नहीं पहुंचेगी।
ये एडम का पहला समझौता था।
बिल्कुल, लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब उसे अपनी बहन एन और विली के रिश्ते का पता चलता है। उसका वो सख्त नैतिक ढांचा इसे सह नहीं पाता। उसे लगता है सब कुछ अपवित्र हो गया।
और फिर
उसका वो आदर्शवाद गुस्से और हताशा में बदल जाता है। वो इसे सिर्फ बहन का मामला नहीं, अपने उसूलों पर हमला समझता है और इसी हालत में वो विली की हत्या कर देता है, शायद इसे एक जरूरी शुद्धिकरण मानकर,
और खुद भी मारा जाता है।
हाँ, विली का बॉडीगार्ड शुगर बॉय उसे मार देता है। एडम का अंत शायद ये दिखाता है कि कैसे एब्सोल्यूट नैतिकता भी दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी में हिंसक हो सकती है।
दो और किरदारों का जिक्र जरूरी है, जज अर्विन और सैंडी बर्क। जज अर्विन के बारे में तो हमने बात की, जैक के पिता समान सम्मानित।
लेकिन अतीत में एक दाग, रिश्वत कांड, जिससे किसी की जान गई थी। जब जैक सच सामने लाया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली और जैक को अपने असली पिता का पता चला।
और सैंडी बर्क, वो विली की सलाहकार और
प्रेमिका भी, बहुत तेज, दुनियादार। विली के लिए उसका प्यार जुनून जैसा था, पर उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और खतरनाक भी। वो विली की कामयाबी के लिए कुछ भी कर सकती थी।
लेकिन उसी ने एडम को भड़काया।
हाँ, जब उसे लगा कि विली ने उसे एन के लिए छोड़ दिया है, तो जलन और बदले की आग में उसने एडम को विली के खिलाफ भड़काया। अंत में वो एक मेंटल असाइलम में है। सत्ता के खेल में इंसानी रिश्तों की कीमत का एक दुखद उदाहरण।
कहानी का क्लाइमेक्स वो कैसे आता है, चीजें कैसे बिगड़ती हैं,
सब कुछ एक साथ होने लगता है। विली पर महाभियोग का खतरा, जैक का जज इरविन का राज खोलना, जज की आत्महत्या, फिर जैक को अपने पिता का सच पता चलना। वो जैसे खुद ही सवालों में घिर जाता है।
और विली की निजी जिंदगी में भी उथल पुथल।
हाँ, बेटा टॉम का एक्सीडेंट होकर अपाहिज हो जाना, इनके साथ रिश्ते का खुल जाना, विली शायद खुद भी अंदर से टूट रहा था और दुश्मन मौके की तलाश में थे ही।
और फिर वो हत्याएं।
सैंडी बर्क अपना बदला लेती है। वो एडम स्टंटन के पास जाती है, उसे एन और विली के रिश्ते के बारे में बताती है, और ये भी कि विली ने अस्पताल का मुखिया बनाकर कैसे उसका इस्तेमाल किया है।
एडम का तो दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया होगा।
बिल्कुल, उसका आदर्शवादी संसार ढह जाता है। वो बंदूक उठाता है, स्टेट कैपिटल जाता है और विली को गोली मार देता है।
और फिर शुगर बॉय एडम को मार देता है।
हाँ, सत्ता का खेल अपने खूनी अंजाम पर पहुंचता है।
इन हत्याओं के बाद एक भयानक शांति, लेकिन इसी राग से जैक बर्डन एक नए रूप में निकलता है।
हाँ, वो ग्रेट ट्विच को छोड़ देता है। अब वो जिंदगी को स्पाइडरवेब की तरह देखता है, जुड़ाव और जिम्मेदारी को समझता है, समय की भयानक जिम्मेदारी को स्वीकार करता है।
और उसकी जिंदगी भी बदलती है।
जी, वाहन से शादी करता है, विली के बूढ़े दत्तक पिता की देखभाल करता है, और वो कैस मास्टन की कहानी पर किताब लिखने का फैसला करता है, जिसे वो अब समझ सकता है।
तो अंत में वो दुनिया से भागने के बजाय उसमें वापस लौटता है।
हाँ, उपन्यास का अंत जैक और एन के गवर्नर की हवेली छोड़कर वापस दुनिया के शोर और जिम्मेदारियों में लौटने की तैयारी से होता है, अब छिपने के लिए नहीं बल्कि उसमें हिस्सा लेने के लिए।
तो इस उपन्यास के मुख्य संदेश क्या है? पहला तो शायद सत्ता का भ्रष्ट करने वाला स्वभाव।
बिल्कुल, विली का उठना और गिरना यही दिखाता है। क्या सत्ता पाने के लिए नैतिक समझौते जरूरी हैं? वॉरेन कोई आसान जवाब नहीं देते।
और दूसरा, अतीत का असर, इतिहास कैसे हमारे आज को तय करता है।
सही कहा, जज इरविन, कैस मास्टन, ये सब यही दिखाते हैं कि अतीत कभी मरता नहीं।
और वो नैतिक दुविधा, बुराई से अच्छाई बनाना, क्या अंत हमेशा साधनों को सही ठहरा सकता है?
ये सवाल हमेशा बना रहता है। जैक की पूरी यात्रा ही ज्ञान और खुद को पहचानने की है। वो सीखता है कि सिर्फ तथ्य जानना काफी नहीं, नतीजों को समझना जरूरी है।
और वो ग्रेट ट्विच बनाम स्पाइडरवेब, नियति और मर्जी का सवाल।
हाँ, कि हालात चाहे जो हों, हमारे चुनाव मायने रखते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है।
लिखने का अंदाज भी तो कमाल का है, जैक का कहानी सुनाना अतीत को याद करते हुए।
हाँ, वो रेट्रोस्पेक्टिव नरेशन, इससे कहानी में गहराई आती है और कहानी सीधी नहीं चलती। फ्लैशबैक और उपकथाएं हैं, जैसे अतीत और वर्तमान बातें कर रहे हों।
भाषा के बारे में क्या कहेंगे?
भाषा अद्भुत है, कहीं बहुत काव्यात्मक, कहीं एकदम जमीनी, तक्षणी बोलचाल वाली। वाक्य लंबे, सोचने पर मजबूर करने वाले भी हैं। प्रतीक भी बहुत हैं, हाईवे, ग्रेट ट्विच, स्पाइडरवेब, आँखें।
और कुछ पंक्तियां तो याद रह जाती हैं, जैसे वो इंसान गुनाह में पैदा होता है वाली।
हाँ, या अंत में जैक का वो दुनिया एक विशाल मकड़ी के जाले की तरह है वाला एहसास।
तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें इंसानी स्वभाव, सत्ता और नैतिकता के उलझे हुए रिश्ते के बारे में सिखाती है कि अच्छाई बुराई अक्सर मिली होती हैं।
हाँ, और ये आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये बिना किसी झिझक के दिखाती है कि लीडरशिप में समझौते होते हैं और इतिहास का बोझ हम पर रहता है। ये हमें अपनी जिम्मेदारियों पर सोचने को मजबूर करती है, उस मकड़ी के जाले में हमारी जगह और हमारे कामों के असर को समझने की चुनौती देती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।